मृत शरीर है और जीवित शरीर है, सब कुछ तो वैसे ही है, ज्यों का त्यों है ना, तो क्या अंतर है, है? कितना अच्छा प्रभुपाद ने प्रश्न उठाया, प्रश्न कितना सरल है, लेकिन है? अगर गहराई से देखा जाए तो जो है ना उनके लिए बड़ा कठिन है जो भगवत गीता को नहीं समझते। भगवत गीता में इसका उत्तर बिल्कुल सरल दिया गया है, नहीं जो नहीं भगवत गीता को समझेंगे नहीं पढ़ेंगे उनके लिए कभी भी इसका उत्तर नहीं मिल सकता है। मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है, मतलब अभी हाल में ही जो मरा है क्या अंतर है ना, तो इतना सरल उत्तर है, लेकिन उनके लिए जो है ना वो लाखों लाखों साल भी खोज कर दे रहे हैं, ये खोज नहीं कर सकते क्या अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा डिपार्टमेंट आपका है कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में विकसित हो चुका है, आज का विज्ञान जो है शरीर की कार्य प्रणाली को समझने में बहुत विकसित हो गया है, बहुत उन्होंने पता लगाया है कि शरीर में कौन कौन से जो है ना अंग क्या क्या कार्य करते हैं, बड़ा उन्होंने अन्वेषण किया है, विश्लेषण किया है, परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग यानी आत्मा के विषय में अध्ययन करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। जो कमी है आज के विज्ञान की वो ये है कि आत्मा का अध्ययन करने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मॉन्ट्रियल राजपत्र में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ विल्फ्रेड जी विगिलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। विश्वविख्यात डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ विगिलो वो आग्रह कर रहे हैं क्या, इस विषय में अनुसंधान करो भाई। उनका विचार है कि ये ज्ञात किया जाए आत्मा क्या है और ये कहां से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगेलो के आग्रह के उत्तर में शिला प्रभुपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। प्रभुपाद ने जो समाचार पत्र में उनका कथन छपा था उसका उत्तर लिखा प्रभुपाद ने। देखो प्रभुपाद जी कितने जागरूक हैं, कोई व्यक्ति अगर जानना चाहता है तो अपनी तरफ से पत्र लिखते हैं, वो व्यक्ति इनको नहीं जानता है प्रभुपाद को, वो जो जानना चाहता है उसको सबको ही जानता है, तो प्रभुपाद जी उसको पत्र में लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यावहारिक विधि का सुझाव देते हैं। अब देखिए एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती है। बहुत विश्वविख्यात जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा कि उनको विश्वास है कि शरीर में आत्मा है। धर्म के तत्वों के लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए, उनका कहना है कि भाई जो धार्मिक लोग हैं उनको अन्वेषण करना चाहिए। डॉक्टर विल्फ्रेड जी विगिलो जनरल हॉस्पिटल कनाडा में हृदय सम्मोहन चिकित्सा के प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा की खोज धर्म के तत्वों को जानने वालों और विश्वविद्यालयों में धर्म से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। तो वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आत्मा को खोज करो। एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को आत्मा की खोज करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उनके प्रयोगों से बाहर है, प्रयोगशाला में जो उनके प्रयोग हैं उनमें वो खोज नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि धर्म के तत्व के लोग जो है खोज करें इसको। अब इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा एक सज्जन है, उन्होंने कहा यदि आप यदि आत्मा है तो आप उसको ना देख सकते हैं ना ही ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वो क्या है? समस्या तो यह है, आत्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं रहती, यद्यपि वो सर्वत्र है फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। ये अपनी अटकलबाजी लगा रहे हैं, मिस्टर लेडी अपनी अटकलबाजी लगा रहे हैं कि शरीर में सब जगह है और शरीर में कहीं नहीं है। तो अटकलबाजी लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको सही जानकारी मिलती नहीं। हम जानते हैं कि शरीर में सब जगह नहीं है, कहां पर है? हृदय में है, है ना? तो भले ही ऐसा हो, डॉक्टर बेगिल ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो कुंजी यह है कि उत्तर की खोज करिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। प्रधान प्रश्न यह है कि बिगल ने कहा आत्मा कहाँ है और ये कहाँ से आती है। आत्मा तो है लेकिन कहाँ पर है और कहाँ से आती है वो जानना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर बिगेलो। अब प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा, डॉक्टर बिगेले को क्या लिखा? प्रिय डॉक्टर बिगेलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने गजट में रे करोली के एक लेख का अध्ययन किया जिसका शीर्षक है हृदय रोग चिकित्सक ये जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे वो लेख अत्यंत रोचक लगा। देखो वो लेख छपा था ना समाचार पत्र में, तो प्रभुपाद उनको जवाब लिखते हैं, जवाब नहीं उनको पत्र लिखते हैं कि ये लेख मुझे बड़ा रोचक लगा, उसमें की गई समीक्षाएं आपकी गहन दृष्टि की सूचक हैं। मतलब आपने काफी विचार किया है गहराई से, तब आपने प्रश्न उठाया है आत्मा के बारे में। अतः मैंने विचार किया कि आपको इस विषय पर कुछ लिखूं। संभवतया आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूं। प्रभुपाद पत्र में लिखते हैं कि शायद आप जानते हो, हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल में मंदिर है, टोरंटो में मंदिर है, वैंकूवर में मंदिर है और हैमिल्टन में मंदिर है। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक शिक्षा देने के लिए ही श्री कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। निस्संदेह जीवों के हृदय में आत्मा उपस्थित है और ये और वो शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। कौन? जीवात्मा। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। ये चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि चेतना है सब जगह व्याप्त। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से युवा अवस्था और तत्पश्चात वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हम जीर्ण यानी पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं। इसे आत्मा का देहांतर कहा जाता है। देखा प्रभु जी कितना साफ साफ बता रहे हैं। आगे, आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब है अस्तित्व के घोर संघर्ष वाला जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जहां तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है। जब तक हृदय में आत्मा ना रहे तब तक वहां सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, हृदय बदलते हो मरीज का, है ना, तो इसका क्या मतलब है हृदय बदल दिया। आत्मा ड्राइवर के समान है तथा हृदय सीट है। ड्राइवर के बिना सीट को बदलने से क्या गाड़ी चलेगी? आप सोचिए,
आत्मा करना हो शरीर में तो हृदय को परिवर्तन करने से क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो निकल गया है। तो हृदय परिवर्तन से फायदा तभी होता है जब पहले से हृदय में आत्मा है, तभी हृदय बदलने से कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता है। लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो आप हृदय बदलते रहो, क्या होगा? कुछ फायदा नहीं। हाँ,
अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित ना हो तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं तो लोग कितनी भी, वैज्ञानिक लोग कितनी भी व्याख्या करें, वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है ना? तो श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है कि पुंसो रेतः कण आश्रयः, कि पुरुष के वीर के कण का आश्रय लेकर के जो जीवात्मा है वो स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गर्भ धारण हो नहीं सकता है आत्मा के बिना। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप वहां आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। निरोध का मतलब यही है कि वहां पर स्थान मिलता नहीं है आत्मा को रहने लायक, इसलिए ये श्री भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। तो भगवान ने स्थान बनाया आत्मा को रहने के लिए और उस स्थान को लोग विकृत कर रहे हैं जिससे आत्मा ना रहे, तो भगवान के विधान के विरुद्ध है ये कार्य। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। ये भगवान की अवज्ञा है, ठीक है ना। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है ये। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है, यदि उस घर की स्त्री इतनी अशांत है कि वो वहां प्रवेश नहीं ही नहीं कर सके तो उस व्यक्ति की महान हानि और साथ में उसे घोर असुविधा भी होती है। ये अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है। भगवान के विधान के अनुसार वो व्यक्ति दंड पाएगा। कौन? जो गर्भ निरोध करते हैं। फिर गर्भ के अंदर बच्चा मारना तो और ज्यादा अपराध है, गर्भपात बहुत ज्यादा अपराध है। आत्मा की खोज का कारण निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा। अगर विज्ञान जो है ना आत्मा की खोज का कार्य करे तो निश्चित रूप से क्या होगा, तब विज्ञान की उन्नति मानी जाएगी कि हाँ भाई विज्ञान उन्नति कर रहा है। परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000 अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि आत्मा को वे पकड़ सकें। केवल अधिकारियों महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तत्काल ही हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तत्काल ही हम भगवान के अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है जबकि जीव अत्यंत लघु है, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान हैं। अतएव जहां भगवान सर्वव्यापक हैं
वहीं जीवात्मा सीमित है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है।
देखा प्रभुपाद जी ने कितना विस्तार से ये सब वर्णन लिखा है पत्र में। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है, इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्राणों के हृदय में आत्मा निवास कर रही है
और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है, जैसे कोई वस्त्र परिवर्तन करे।
मूलतः आत्मा भगवान से आती है, जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब अलग हो जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होता है। चिंगारी, अग्नि चिंगारी अग्नि से निकलती है और फिर वो क्या होती है, बुझ जाती है। उसी प्रकार आत्मारूप स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का तीन विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग
जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि संबंधित उसके गुण बने रहते हैं, जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि की शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित ना हो,
अनुकूल दशा में स्थित ना हो। और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुझ जाता है। इस प्रकार हम जीवन की तीन अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरे प्रायः भूले हुए हैं, फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है।
तीसरे प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। तो ये तीन अवस्थाएं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की हैं।
आत्मरूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृत सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है, और यदि जीव को उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सरलता पूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। ये मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को नूतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। आपका एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो कितना प्रभुपाद जी ने स्पष्ट पत्र लिखा है और कितनी सहयोग की भावना है प्रभुपाद जी के अंदर। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को खोजे, विचार करें। अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने तीन अवस्थाएं जो बतलाई हैं, तो इनका कुछ और विवरण दें। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि से चिंगारी जब निकलती है तो तीन अवस्थाओं होती हैं। या तो वो सूखी घास में गिरे, सूखी घास में गिरती है चिंगारी तो उसमें आग पैदा कर देती है और उससे मतलब वो अपना जो है ना प्रकाश फैलाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम से गिरी हुई जो जीवात्माएं हैं सत्वगुण में अगर आती हैं, सत्वगुण में आती हैं तो सत्वगुण में क्या है, प्रकाश है, ज्ञान है, तो उसको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और सहायता मिलती है भगवान के धाम में वापस जाने में, ठीक है ना। और फिर दूसरी स्थिति है चिंगारी गिरे कहां पर, धूल में, धूल में गिरे चिंगारी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बुझ जाएगी, तो वो रजोगुण का हाल है।
तो रजोगुण में दोनों प्रकार की संभावनाएं होती हैं। चिंगारी को यदि कुछ अनुकूलता मिलती है तो वह प्रज्वलित भी हो सकती है, और यदि प्रतिकूलता मिलती है तो बुझ सकती है, या ऐसा भी होता है कि चिंगारी जलती बुझती रहती है। तो इसी प्रकार जीव रजोगुण में अच्छी संगति से पुण्य करता है, बुरी संगति से पाप में फंस जाता है, या हमेशा पाप तथा पुण्य के मिश्रण में कर्म करता रहता है। और चिंगारी अगर पानी में गिरे तो बुझ जाएगी, काली पड़ जाएगी, तो तमोगुण में ये हाल होता है।
ठीक है, और कोई प्रश्न? तो इनका कहना है कि कुछ लोग अपने को जो है ना कारण मानते हैं कि मैंने बच्चा पैदा किया है ना, लेकिन वास्तव में तो जो आत्मा है वो तो भगवान से आ रही है ना, तो आत्मा को थोड़ी पैदा कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो अपने को सोचते हैं कि मैंने आत्मा पैदा की है या मैंने बच्चा पैदा किया है। ठीक है ना, तो ये अज्ञान है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम नहीं मनते। अहंकार से मूर्ख बना हुआ व्यक्ति अपने को कर्ता मानते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न?
तो इस पत्र में प्रभुपाद जी ने एक बड़ी ही जो है आश्चर्य की बात बताई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि आधुनिक जो विज्ञान है तो उसकी उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। विज्ञान की उन्नति से वैज्ञानिक लोग चाहे जितनी उन्नति करें ये आत्मा को नहीं ढूंढ सकते हैं। आत्मा की उपस्थिति प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। मतलब प्रभुपाद जी का कहना है कि किसी प्रकार के प्रयोग के द्वारा आत्मा को ये लोग नहीं जान सकते। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। मतलब जैसे कि सूर्य को आप नहीं देख पाते हैं, अगर बादल से ढका हुआ है लेकिन फिर उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है ना, जिससे कि पता चलता है कि दिन है, इसका मतलब है कि बादल के अंदर या बादल के पीछे सूर्य है। तो उसी प्रकार से शरीर में जो चेतना है तो उसी से ही आत्मा की पहचान होगी। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं, आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000 अंश है। हाँ, जैसे कि बाल के नोक का बताया गया है कि बाल के नोक का 10,000 अंश है आत्मा, तो यहाँ प्रभुपाद जी बिंदु बता रहे हैं, क्योंकि जो विज्ञान है या गणित है उसमें लोग बिंदु की बात करते हैं। और जो बिंदु है प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सके, या बिंदु की लंबाई चौड़ाई भी नहीं माप सकते, तो फिर बिंदु का जो 10,000 हिस्सा है आत्मा उसको फिर कैसे नाप सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
29 फरवरी 1972 को प्रभुपाद जो है बॉब कोहेन से जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक हम भगवान के साथ में सहयोग ना करें हमारा जीवन असफल रहेगा। जैसे कि कोई पुर्जा है, अगर किसी मशीन से गिर जाए तो उसका फिर कोई महत्व नहीं होता, परंतु अगर वही पुर्जा फिर से उसी मशीन में लग जाए तो इसका महत्व होता है। तो हम भगवान के अंश हैं, बिना भगवान के हमारा क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। हमें फिर से अपनी मूल स्थिति में आना है, भगवान के साथ में जुड़ना है, तब हमारा महत्व है। 1 मार्च 1967 को सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया कि चाहे भारत हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, सब जगह कष्ट है। इस भौतिक संसार में कोई भी स्थान हो कष्ट है, परंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि वे केवल अच्छी मोटर कार उनके पास है या गगनचुंबी भवन है तो वो सोचते हैं कि मेरी समस्याएं सुलझ गई, और वे नहीं जानते हैं कि ये जीवन जो है ना क्षणभंगुर है और मैं तो नित्य हूँ। 2 मार्च 1976 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि वैदिक सभ्यता का मतलब ये है कि जो पति है वो कृष्ण का सच्चा दास हो और जो पत्नी है वो अपने पति की सच्ची दासी हो। 3 मार्च 1970 को प्रभुपाद ने एक सज्जन को पत्र लिखा कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो जो आपके सबसे प्रिय मित्र हैं, और हमेशा उनकी सेवा करो केवल उनको प्रसन्न करने के लिए, और वे आपको पूरी बुद्धि देंगे कि कैसे प्रथम श्रेणी का भक्त बना जाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे हरे हरे
जय 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 प्रभुपाद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
सीताराम
सीताराम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जय 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 प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे